आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 4 सितंबर 2025 की एक रंगीन सी शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरगिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी फेवरेट लेजर एक्टिविटी की। भाई, कल हमने बात की थी कि आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज कौन सी है, व्यायाम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आज मुझे बताइए कि आप रिलैक्स करने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं। नंबर है 04397997667। कार्यक्रम में आज सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद चर्चा रहेगी भारत के पंजाब राज्य में आई भीषण बाढ़ की। इसके बाद लाएंगे चर्चा आसमान छूते सोने के भाव पर और आगे बात करेंगे बच्चों की दंत चिकित्सा पर आए एक शोध की। अंत में चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में गंगा नदी के तट से इकट्ठा किए गए कपड़ों को वापस इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके अलावा रहेंगे आपके संदेश और आपकी ही पसंद के गीत भी। आज मैंने आपसे पूछा है कि कल हमने जिस तरह से एक्सरसाइज की बात की थी कि आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज क्या है, आज आप मुझे बताइए कि आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। 04397997667 हमारा नंबर है। जब तक आप भेज रहे हैं संदेश, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ संक्षिप्त समाचार की ओर। आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई भारतीय समुदाय के नेताओं ने सीनेटर जेसिंटा नापनजुब्बा प्राइस से माफी मांगने की अपील की है। सीनेटर प्राइस ने दावा किया था कि लेबर पार्टी जानबूझकर भारतीय प्रवास को बढ़ावा दे रही है ताकि चुनावी नतीजों में फायदा मिल सके। बुधवार 3 सितंबर को दिए गए इस बयान को सीनेटर प्राइस ने बाद में आंशिक रूप से वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने भड़काऊ दावों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस के अध्यक्ष शैल वाधवा ने कहा कि उनके समुदाय से माफी मांगी जानी चाहिए। सीनेटर प्राइस का ये बयान उस समय आया है जब रविवार 31 अगस्त को देशभर में एंटी इमिग्रेशन रैलियां हुई, जिनमें कई जगह पर नियोनाजी गुट भी शामिल थे। इन रैलियों का राजनीतिक खेमों में व्यापक रूप से विरोध भी हुआ है। हालांकि सीनेटर प्राइस ने इन प्रदर्शनों का समर्थन किया और कहा कि ये प्रो ऑस्ट्रेलिया मार्च था, क्योंकि लंबे समय से वे लोग जो खुद को गर्व से ऑस्ट्रेलियाई कहते हैं, खासकर वामपंथियों द्वारा हमले का सामना कर रहे हैं और उन्हें बार बार बताया गया है कि हमारा देश नस्लवादी है। दूसरी ओर, होम अफेयर्स लेजिस्लेशन अमेंडमेंट 2025 मेजर्स नंबर 1 बिल 25 अब संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। ये कानून फेडरल सरकार को गैर नागरिकों को तीसरे देशों में निर्वासित करने की अनुमति देता है। सरकार ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह संसद में पेश किया था और आज ये विपक्षी कोएलिशन के समर्थन से दोनों सदनों में पारित हो गया है। मानवाधिकार और शरणार्थी कार्यकर्ताओं ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि ये बुनियादी कानूनी सुरक्षा को हटा देता है और इसका इस्तेमाल ब्रिजिंग वीजा पर रहने वाले लोगों को भी निर्वासित करने के लिए किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कानून NZYQ समूह को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। ये लगभग 280 लोगों का समूह है जिन्हें 2023 में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लंबी अवधि की इमिग्रेशन डिटेंशन से रिहा कर दिया गया था। इनमें से कुछ के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन स्वतंत्र सेनेटर डेविड पिकॉक ने कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की आशंका को दोहराया है कि इस कानून की पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फेडरल सरकार ने रोबोडेट योजना के पीड़ितों को दूसरी सामूहिक याचिका के निपटारे के लिए $475 मिलियन का अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति जताई है। एक बयान में अटॉर्नी जनरल मिशेल रॉलिन ने उल्लेख किया कि रॉयल कमीशन ने इस कोएलिशन चालित योजना को असभ्य, क्रूर, आघातकारी और अवैध बताया था। उन्होंने कहा कि दावे का निपटारा करना न्यायसंगत और उचित कदम है। सैकड़ों हजार ऑस्ट्रेलियाई इस अवैध और स्वचालित योजना से प्रभावित हुए थे, जिसके तहत कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वे कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया गया था जो उन्होंने लिया ही नहीं था। आज हुए समझौते से उस पहले निपटारे पर की गई अपील समाप्त हो गई है, जिसकी राशि $112 मिलियन से अधिक थी और जिसे रॉयल कमीशन में सामने आए नए सबूतों ने जन्म दिया था। $475 मिलियन का ये मुआवजा कानूनी खर्चों और योजना के प्रशासन को शामिल करने पर बढ़कर $548 मिलियन तक पहुंच सकता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार टैरिफ पर शीघ्र निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी। अमेरिकी अपील अदालत ने विभाजित फैसले में लागू किए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध ठहराया है। अदालत ने पाया कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और यह कि प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाने से पहले कांग्रेस से परामर्श लिया जाना चाहिए था। यदि यह निर्णय बरकरार रहता है तो यह ट्रंप प्रशासन के एक प्रमुख आर्थिक और भू राजनीतिक कदम को कमजोर कर देगा और टैरिफ केवल मध्य अक्टूबर तक ही लागू रह सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील को सुनने और जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब केवल दो स्लैब रहेंगे, 5% और 18% के, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। इससे लगभग 175 वस्तुएं सस्ती होंगी। दूध, रोटी, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ और कई जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से टैक्स मुक्त रहेंगी। सीमेंट पर कर 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है और छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें और एम्बुलेंस भी अब कम दरों पर आएंगी। सौर उपकरण, उर्वरक, चश्मे और जीवन बीमा योजनाएं भी टैक्स फ्री होंगी। वहीं तंबाकू, लग्जरी सामान, निजी यॉट और एयरक्राफ्ट पर अब 40% का उच्चतम कर लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक राहत का संकेत दिया था, लेकिन सरकार ने इसे पहले ही लागू करने का फैसला किया। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस कदम को सर्वसम्मति से समर्थन दिया है। इसी के साथ 4 सितंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। सुनते रहिए SBS हिंदी को। और संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए करते हैं चर्चा भारत के पंजाब राज्य की। भारत में अगस्त और सितंबर की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा दी है, जिसमें पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। इस हद तक कि वहां की राज्य सरकार ने पूरे क्षेत्र को, पूरे राज्य को ही आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। ऐसे में पंजाब के हालात के बारे में शशि कुमार ने बात की पत्रकार संपादक अकु श्रीवास्तव से और समझा कि कैसे है वहां के मौजूदा हालात। तो पहले आइए ये खबर सुनते हैं।
भारत में अगस्त सितंबर में भारी मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है, जिसमें पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं और 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके अलावा भारी संख्या में पशुधन के नुकसान की भी खबर है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से हालत लगातार खराब बने हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। पंजाब के हालात के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की पंजाब केसरी समूह के हिंदी अखबार नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव से। अक्कू श्रीवास्तव जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो सर, पंजाब में फिलहाल बाढ़ की क्या स्थिति है?
देखिए, पंजाब में बाढ़ की स्थिति हाल फिलहाल में बुरी है और निश्चित रूप से पिछले हाल के वर्षों में 6-7 वर्षों में ऐसी बाढ़ नहीं आई है। लेकिन क्योंकि इस बार बाढ़ उत्तरी से ज्यादा है और परेशानी वाली है, तो पंजाब का लगभग 40% हिस्सा, विशेष रूप से गाँव का हिस्सा डूबा हुआ है। लोग परेशान हैं और शहरों में भी कई जगह पहली फ्लोर पर जो ग्राउंड फ्लोर होती है उस पे पानी भरा हुआ है, लोगों के फर्नीचर खराब हुए हैं, कुछ ऊपर नीचे जा रहे हैं और अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर व्यवस्थाएं लोगों को जो है अपनी करनी पड़ रही है या सामाजिक व्यवस्थाएं हो रही हैं वहां पर, लेकिन अपने तई से ही लोगों को काम चलाना पड़ रहा है, अपनी कोशिशों से ही उनका काम हो रहा है।
जी, और सरकार की तरफ से क्या कोई घोषणा हुई है, केंद्र या राज्य
सरकार? सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी ऐसी राहत घोषणा, देखिए, होना बहुत नहीं, होना ना माने नहीं रखता है आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए होता है तत्काल राहत। तत्काल राहत के स्तर पर बहुत काम नहीं हो पा रहे हैं, ये बात सही है, जबकि बहुत बड़े लेवल पे हो जाने चाहिए थे और सरकार को जबकि इसका अंदाजा हो गया था 20-25 दिन पहले, तो उस स्तर पर नहीं हुआ। इवन अगर जो मुझे प्रशंसा करनी होगी सामाजिक संगठनों की और बाकी जो स्वयं सेवक समूह हैं उनकी, खासतौर से जो गुरुद्वारों से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, वो समूह बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ना ही संघ ये देख रहा है कि किसको जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, और ना ही गुरुद्वारों की तरफ से। और इतना बढ़िया मेल मिलाप उनका इस समय सामने देखने को आ रहा है कि आधे कष्ट तो उनकी वजह से दूर हो रहे हैं। ये राहत सामग्री सिर्फ वही स्थानीय स्तर पर नहीं है बल्कि बाहर से भी आ रही है और दी जा रही है। मुश्किलें रहने की है और वो रहने की मुश्किलें जो है वो स्कूलों में, गुरुद्वारों में, वहाँ मंदिरों में हल की जा रही है।
जी, और अभी ताजा हालात क्या है? क्या पानी का स्तर उतर रहा है या फिर लगातार वैसी स्थिति बनी हुई है? जी
देखिए, बाढ़ में जो सबसे कठिन स्थिति होती है वो पानी जब तक आता है तब तक तो होती थोड़ी बहुत दिखती है, लेकिन उसके बाद पानी उतरने के बाद जो स्थिति जो अब आने वाले 4-5 दिन बाद जो होगी वो सबसे खतरनाक होगी, बीमारी को लेकर के, सड़न को लेकर के, बर्बादी को लेकर के। और अगर उसमें सरकार ने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो उसके सामने पहले से ही मुश्किलें हैं और मुश्किलें आ जाएंगी।
और जिन किसानों की फसलें डूब गई है उनके लिए क्या कुछ मुआवजे का अभी तक कुछ हुआ है?
देखिए, मुआवजों का धान की फसल इस समय है और बड़े स्तर पर है पंजाब में। आप जानते हैं पंजाब हरियाणा में बहुत सारा धान बोया जाता है। शुरुआती पानी तो उसके लिए बहुत अच्छा माना गया कि चलो भाई पानी आ रहा है तो कम से कम वो धान में लगेगा, किया जाएगा, इस्तेमाल होगा। और लेकिन बाद में वो विविधा का रूप ले लिया। कुछ सरकारी सहायता हुई है और वो अपर्याप्त है और राज्य सरकार ने 800 करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र से मांगा भी है, केंद्र ने कुछ ही हिस्सा दिया है, कुछ ही किया है, लेकिन असली चीजें हैं वो लागू होने की। लागू होना बहुत मुश्किल काम होता है पंजाब हरियाणा या और सरकारों में, वो बहुत मुश्किल काम है।
और पंजाब में बहुत सालों बाद ऐसी बाढ़ देखने की मिली है, इससे पहले उत्तर भारत में तो बाढ़ आती रहती है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ है, क्या लगता है आपको?
देखिए, अब आप जो पारिस्थितिकी जो चीजें हैं और जो हम लोग छेड़छाड़ लगातार वातावरण से करते रहे हैं, पहाड़ पर जो हम लोगों ने बर्बादी की है उसका हल या वो उसकी बर्बादी का हिस्सा तो हमें भी नीचे भी झेलना पड़ेगा ना, तो वही बर्बादी का हिस्सा जो है वो हम झेलेंगे और झेलते रहे हैं, आगे भी और झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ टूटेंगे तो उसके साथ पत्थर टूटेंगे, पत्थर टूटेंगे तो सिल्ट आएगी। कहने के लिए हो सकता है कि अगली फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि वो अपने साथ मिनरल लेके आते हैं जब तक वो जमा होगा उनका, लेकिन वो बहुत छोटी स्तर पर है। असली चीज है तत्कालिक जो बर्बादी हो रही है वो बड़ी बर्बादी है, और अगर उस बर्बादी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, तो केंद्र सरकार से, किसानों से, भाजपा से इस मामले में किसान पहले से ही गुस्सा में है, उनका और गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार के माध्यम से या अपनी मशीनरी के माध्यम से केंद्र कितनी मदद इंडिविजुअली डीबीटी के माध्यम से कैसे कर सकता है, उसको देखना होगा।
और क्या सरकार के पास कोई है बाढ़ प्रबंधन या भविष्य में बाढ़ रोकने की कोई योजना?
सरकार के पास कोशिशें होती हैं, फिर पैसे का संकट होता है, फिर कुछ होता है कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ईमानदार कोशिश जो नजर भी आनी चाहिए वो अन्य समस्याओं के वजह से किनारे हो जाती है और इसलिए वो उलझन लगातार रहती ही रहती है। तो है, वो समस्या है, थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, बाढ़ प्रबंधन को रोकने के लिए ही बहुत सारी चीजें की गई हैं, लेकिन नदियों को जोड़ने का जो काम है वो बहुत हल्के स्तर पर है, बहुत कमजोर स्तर पर है। तो प्रायोरिटी में मुझे नहीं लगता कि बाढ़ को रोकने का या बाढ़ प्रबंधन को बड़े स्तर पर लागू करने का काम हो रहा, प्राथमिकता के स्तर पर वो काम नहीं किया जा रहा है।
SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
तो ये थे पंजाब केसरी समूह के अखबार नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव, जो हमें भारत के पंजाब में बाढ़ के हालत की जानकारी दे रहे थे। SBS हिंदी से मैं हूँ शशि कुमार, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें SBS हिंदी से। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी और विचार वक्ता के निजी हैं। SBS ना तो इससे सहमत है और न ही असहमत।
भारत की इस खबर के बाद, विशेषज्ञ से चर्चा के बाद, अब आइए रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले अंतराल का। अंतराल पर जाने से पहले आज मैं आपको याद दिला दूं कि चर्चा हो रही थी कि भाई आपकी फेवरेट लेजर एक्टिविटी यानी आराम के समय पे रिलैक्स करने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई संगीत हो, कुछ सुनना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी जो आप करना पसंद करते हैं अनवाइंड करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। 04397997667 हमारा नंबर है, भेजिए मुझे संदेश। मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी सोने के भाव पर बात करने के लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर, आप सुन रहे हैं वृषाली को, और हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, थकान उतारने के लिए, मन बहलाने के लिए, खुद को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं ऐसा जो आपको पसंद है, जो आप नियमित तौर पर करना पसंद करते हैं। जैसे अगर मेरी बात करें तो मुझे रात को जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो एक छोटा वॉक पसंद है, मैं वॉक पर जाना पसंद करती हूँ, और उसे व्यायाम के तौर पर नहीं लेती, बस सांस लेने का एक मौका होता है कि आप पूरे दिन को उतार करके रख देते हैं और बस केवल खुली हवा में एक सांस लेते हैं कि हाँ अब मैं अपने साथ हूँ। तो ऐसा कुछ आप जो करना पसंद करते हो, या फिर आप सोने से पहले पढ़ना पसंद करते हो, तो ऐसी कुछ जो आपको रिलैक्स करता है, जो आपको ऐसा लगता है कि अब दिन का जो हमारा एक ब्रीफकेस है, जो हमारी अटैची है, उसको बंद करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? 04397997667 हमारा नंबर है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, चर्चा करते हैं सोने के बढ़ते दामों की। वे देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि भारतीय परिवारों में पारंपरिक रूप से भी सोना जो है ना, वो सुरक्षा का भी प्रतीक है और उसको बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी कीमत जो है वो 70% तक बढ़ गई है। इससे ऑस्ट्रेलिया में कई लोग अब दुविधा में हैं कि भैया सोने का सामान रखें या फिर बेच दें, क्योंकि सोने को रिसाइकल भी किया जा सकता है, पुराने गहनों को देके नया भी लिया जा सकता है, गहने तुड़वाए जा सकते हैं जिसको कहा जाता है। तो क्या कुछ चल रहा है समुदाय में इसको लेकर के, और किस तरह से महंगे होते इस सोने के बीच में लोग परंपरा को बचा रहे हैं, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ संस्कृतियों में विशेष अवसरों जैसे शादी या जन्मदिन पर उपहार के रूप में सोने के आभूषणों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में सोने की कीमत लगभग 70% बढ़ने के कारण बहुत से लोग इस दुविधा में हैं कि वे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें बेच दें या भावनात्मक कारणों से अपने पास ही रखें। जौहरी डैनी जॉर्जकोपोलोस कहते हैं, जहाँ तक कैरेट की बात है, नियम है जितना ज्यादा उतना बेहतर।
Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them, so they get their back up a bit, but that's what has changed now.
और असली बदलाव ये है कि ग्राहक अब कम कैरेट वाले सोने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब इस कीमती धातु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months, and in 2025 from January to June, it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
उनकी दुकान ओरिया डिजाइन्स पर अधिकतम ग्रीक और इटालियन पृष्ठभूमि वाले ग्राहक आते हैं। ये सिडनी के अर्लवुड उपनगर की होमर स्ट्रीट पर है, जो शादी के कपड़ों का एक तरह से केंद्र माना जाता है।
A lot of crosses, we do a lot of, like, it is a bit of a christening wedding hub here, so people do come for christenings in the area. There's a couple of other shops here with bouboneres and children's clothes and that, so I do sell a lot of crosses. I do carry a lot.
सोने के प्रति लगाव बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 5000 वर्ष से ही इजिप्शियन लोग नाइल नदी की तलहटी में मिले सोने का इस्तेमाल श्रृंगार के लिए करते थे। ये प्राचीन यूरोपीय, मध्यम पूर्वी और दक्षिण एशियाई संस्कृतियों सहित कई सभ्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के लगभग हर हिस्से में इंसान इस चमकीली धातु को इतना क्यों पसंद करता है। प्रोफेसर नीतिका गर्ग सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में उपभोक्ता व्यवहार की शोधकर्ता हैं।
इट्स फनी राइट, सो इट्स ऑब्वियसली कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हाउ वी हैव अटैच्ड वैल्यू टू गोल्ड, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वैल्यू वेयर इट्स कंसिडर्ड, you know, from everything from good luck to a symbolism of wishing the best to your close family and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, which just because it gives them that assurance, it's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
तो आखिर सोने की कीमत बढ़ने के पीछे वजह क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक परिस्थितियां, वैश्विक अशांति और महंगाई का डर, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने और बढ़ा दिया है, इनमें से कुछ कारण है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और निवेशक कठिन समय में इसे एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। काउंसिल के अनुसार 2024 में कुल मांग का लगभग 50% आभूषणों से, 20% केंद्रीय बैंक रिजर्व से, 7% इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपयोग से और करीब 1% चिकित्सा व दंत चिकित्सा से आया। हालांकि ऊंची कीमतों की वजह से आभूषणों की मांग कम हुई है, लेकिन कई हिस्सों में इसकी सांस्कृतिक अहमियत अब भी बहुत मजबूत है। पीटर मैक्वायर trading.com ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं। वो कहते हैं,
First off, let's look at Asia and that corridor from really Australia all the way up to Japan. And you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand that the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or at weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan and the Middle East, and you've really captured again, you know, the best part of probably 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
करीब 8-9 महीने के बच्चे को गोद में लिए अजय और उनकी पार्टनर सिडनी के हैरिस पार्क में गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। ये इलाका कुछ जेवरों की दुकान के लिए जाना जाता है।
It's a ritual for us, to be honest, on every on festivals and occasions. When a kid is born, we buy gold. Diwali, at the Festival of Lights, we buy gold. And we put that in a for temple as well, for worshipping as well. Yeah.
दुकान के मालिक का अनुमान है कि उनके लगभग 90% ग्राहक दक्षिण एशियाई देशों से आते हैं. अक्षत शर्मा अपने पिता के साथ अक्षरा ज्वेलरी चलाते हैं.
Generally, it's necklace sets and bangles, pretty heavy stuff. So the bride side will gift the groom side will gift the bride. They'll obviously gift the rings as well. They'll give some rings, or for the bride, it'll be necklace sets and bangles, and they're generally pretty heavy so that they last a very long time.
पश्चिमी सिडनी का हैरिस पार्क प्यार से लिटिल इंडिया कहलाता है. 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ की लगभग 45% आबादी भारत में जन्मी है. ये उपनगर किराना दुकानों, रेस्टोरेंट, कपड़ों और गहनों की दुकानों से सजा हुआ है. 22 कैरेट सोना दक्षिण एशियाई लोगों की पहली पसंद है. आज के महंगे सोने के बाजार में ये एक कीमती तोहफा है. हालांकि इसने आशिमा को नहीं रोका, जिन्होंने अभी अभी अपने मंगेतर के लिए तोहफा खरीदा है.
इन आवर कल्चर, इफ आई गिव हिम समथिंग मेड ऑफ गोल्ड, आई डोंट हैव टू डिसाइड एनीथिंग एल्स. It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought, that he would love it, and he would also have an emotional connect with that.
प्रोफेसर नीतिका गर्ग कहती हैं कि उपभोक्ता व्यवहार और संस्कृति अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं.
Yeah, most of South Eastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal in terms of personal and social exchanges.
लेकिन वे ये भी बताती हैं कि सोने की आसमान छूती कीमतें भारत के मध्यम वर्ग पर काफी दबाव डालती हैं।
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the give. You know, the very poor and the very rich. Options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. And now gold is so expensive. It's like literally you can't touch it.
अक्षत शर्मा कहते हैं कि दुकान पर अब खरीदने के बजाय बेचने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है.
People have jewelry from 10, 20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also the cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off old jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Vince तुर्की मूल के ऑस्ट्रेलियाई हैं. तुर्की संस्कृति में भी सोने को उपहार के रूप में, खासकर शादियों और जन्म के अवसर पर विशेष महत्व दिया जाता है.
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger, but I was hanging on to it. It was about 100 grams. So it was a bit of a medium-sized chain. So yeah, I sold that about six months ago.
सोने को कठिन समय में सहारा बनने वाली योजना के रूप में एक मूल्यवान संपत्ति भी माना जाता है. शादियों में मेहमानों से उम्मीद की जाती है कि वे सोने के सिक्के या आभूषण देंगे. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि खदानों से उत्पादन वैश्विक सोने की आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है. आमतौर पर हर साल करीब 75%, जबकि शेष हिस्सा रिसाइकल से आता है. अमेरिका का पर्यावरण समूह अर्थवर्क्स कहता है कि दुनिया में 2000 से अधिक खनन की बड़ी कंपनियां हैं, जिनके अलावा असंख्य छोटे छोटे पारंपरिक खनन स्थल भी हैं। समूह का कहना है कि ये खदानें प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं और बहुत कम ही कंपनियां पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाती हैं। विभिन्न अध्ययनों का कहना है कि सोने का रिसाइकल मौजूदा वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे खनन पर निर्भरता कम होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि वार्षिक सोने की मांग का लगभग 1/4 हिस्सा पहले ही रिसाइकल से पूरा हो रहा है और इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर और बढ़ाया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं कि खनन कंपनियों के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके अपनाकर सोने का दोहन करना प्राथमिकता होनी चाहिए। SBS न्यूज से पेगी जाकुमलोस की इस खबर को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS हिंदी से वृषाली जैन ने। और दोस्तों, मेरे पास चेतन शाह जी का संदेश आया है और वे कह रहे हैं, आई लव लिसनिंग टू द रेडियो, स्पेशली द SBS हिंदी शो। थैंक यू सो मच। अनवाइंड करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप हमें सुनते हैं और ये बहुत बड़ा एक ऑनर है, एक बहुत बड़ी आप जिसे कह सकते हैं ना प्रशंसा है, और इसे हम बहुत तहों में संभाल करके रख ले रहे हैं। चेतन शाह जी, थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाई, आपको भी सोना वोना खरीदने में दिक्कत हो रही है क्या? बताइएगा हमको 04397997667। या फिर आज एक और इंटरेस्टिंग गेम कर सकते हैं। भाई, ये मुझे बताइए कि आपने सबसे सस्ता सोना अपने जीवन में कब खरीदा था? साल बताना है आपको, प्राइस मत बताइए, लेकिन सबसे सस्ता सोना आपने अपनी लाइफ में कब खरीदा था? मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने सबसे सस्ती सोने की स्लिप कौन सी देखी है। मैंने अपनी मम्मी की शादी में खरीदे गए सोने की एक स्लिप देखी थी और उससे मुझे एक्चुअली याद आया कि उस समय सोना कितना सस्ता हुआ करता था। और पर मुझे ऐसा लगता है हर जेनरेशन में हर किसी को ये लगा होगा ना कि सोने के भाव तो सोने ही के भाव होंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर जेनरेशन के हिसाब से वो थोड़ा महंगा रहा होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि सबसे सस्ता सोना आपने अपनी लाइफ टाइम में कब खरीदा है? तो 04397997667 हमारा नंबर है। छोटा सा एक अंतराल ले रही हूँ, अंतराल के बाद करेंगे चर्चा बच्चों के ओरल हाइजीन की, बच्चों के दंत चिकित्सा की। ठीक है, बस आइए अभी के अभी।
क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें, SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को, और पीयूष जी व्हीलर्स हिल से लिखते हैं कि नमस्ते वृषाली जी, गोल्ड इज द बेस्ट मेटल एज स्टोर ऑफ वैल्यू, इवन मोर सो द प्राइसेस एट द मोमेंट आर एट इट्स पीक, द मोस्ट सॉट आफ्टर विद ऑलवेज गुड रीसेल वैल्यू एंड मोड ऑफ सेटलमेंट एंड गेटिंग लोन इन वेरी बैड टाइम्स। बिल्कुल पीयूष जी, और इसी वजह से सोने के भाव लगातार बढ़ते जाते हैं और बुरे समय के लिए, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी सुना कि केंद्रीय बैंक जो होते हैं, रिजर्व बैंक्स जो होते हैं, शीर्ष बैंक जो होते हैं देशों के, वे भी सोना खरीद करके अपने पास रख रहे हैं। और हमारे पास मिंकू धामधरे जी का संदेश आया है सिडनी से, जो कह रहे हैं नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कि भाई किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में 24% बच्चों के दांतों में सड़न होती है और किशोरों को दांतों की सड़न के कारण बुलिंग का सामना करना पड़ता है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, पर सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर अंकुर सिंह दांतों के झड़ने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में बात करते हैं और इसीलिए बताते हैं कि क्यों विशेषज्ञ अब सरकार से मुफ्त दंत चिकित्सा यानी डेंटल हेल्थ की जो मुफ्त सेवाएं हैं उसके लिए आग्रह कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ, और आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्थायी दांतों में सड़न यानी कैविटी का सामना करना पड़ता है। हालांकि हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च बताती है कि इसका प्रभाव उनके शरीर पर ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में बिना इलाज के डेंटल डीके यानी दांतों की सड़न अधिक आम है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने सरकार से बच्चों और किशोरों को मुफ्त दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की मांग की है। हाल ही में सिडनी यूनिवर्सिटी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के संयुक्त शोध में ऐसा पाया गया है कि जो किशोर दांतों की सड़न या चोट के कारण अपने दांत खो देते हैं, उनके साथ बुलिंग होने की संभावना 42% अधिक होती है। इस सर्वे से ये भी पता चला है कि बुलिंग यानी कि धमकाना या उन्हें परेशान करना बच्चों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। 14 से 13 साल की आयु के लगभग 70% बच्चों ने बताया कि उन्हें साल में कम से कम एक बार बुलिंग का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में कक्षा 8 के 28% छात्र जो कि 12 से 13 वर्ष के आयु में हैं, हर महीने बुलिंग का सामना करते हैं, जबकि 8% छात्र हर हफ्ते बुलिंग की शिकायत लेकर आते हैं। ये जो निष्कर्ष हैं, ये JDR क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन के 4,400 बच्चों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिन्हें बचपन यानी 8 से 9 वर्ष की आयु से लेकर किशोर अवस्था यानी 14 से 15 साल की आयु तक ट्रैक किया गया। ऐसे में इस रिसर्च के वरिष्ठ लेखक एसोसिएट प्रोफेसर और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और चार्ल्स पार्किंस सेंटर के सदस्य अंकुर सिंह से हम जुड़े और इस रिसर्च पर हमने उनसे विस्तार से बातचीत की।
जी, मेरा नाम एसोसिएट प्रोफेसर अंकुर सिंह है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में चेयर ऑफ लाइफ स्पैन ओरल हेल्थ की पोजीशन पे हूँ और मेरा काम यूजुअली मेरा रिसर्च जो है वो ओरल हेल्थ पॉलिसीज यानी कि नीतियाँ जो ओरल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं नेशनल लेवल पे, उसके ऊपर है।
तो अंकुर जी, आज हम एक खास रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि किशोरों यानी कि एडोलेसेंस में दांतों का झड़ना या खराब होना आखिर कितना आम है।
दांत झड़ना या गिरने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है दांतों में कीड़ा लगना, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में डेंटल केरीज बोलते हैं, और करीब 1/4 ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जो है 6 से 14 साल की उम्र में जो है आपके परमानेंट दांतों में बच्चे वो जो है कीड़ा लगना एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और करीब 10% बच्चे जो है वो डेंटल ट्रॉमा जो होता है कि उनको चोट लग जाती है या खेलते हुए लग जाए दांतों पे, वो डेंटल ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये काफी कॉमन है, खास करके दांतों में कीड़ा लगना, और ये दोनों ही कारण जो है वो अल्टीमेटली आपको जो है दांतों का निकालना, जो मिसिंग टीथ या टूथ लॉस कहेंगे, वो कर सकते हैं अगर इन पे सही टाइम पे इंटरवेंशन नहीं हुआ या सही टाइम पे उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो।
जी, तो अंकुर जी, इस रिसर्च से ये भी सामने आया है कि ऐसा कुछ जब बच्चों के साथ होता है तो उनकी शारीरिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उनका जो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ है वो भी काफी प्रभावित हो जाती है, तो आप इस पर हमें कुछ अगर बता पाए।
जी बिल्कुल, देखिए पहली चीज है कि जब दांतों में कीड़ा लगता है या वो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है या किसी ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दर्द होता है, पेन, और पेन होता है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इम्पैक्ट होता है, वो आपस में बात करने में उनकी स्पीच गड़बड़ाने लग जाती है, उनका न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है, उनकी नींद खराब होती है। तो ये सारे जो कारण है ओवरऑल उनकी हेल्थ पे, उनकी मानसिक स्थिति पे, मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट डालती है। तो ये तो एक रीजन है, और बाकी इस स्टडी में हमने जो देखा कि ना सिर्फ ये डायरेक्टली मानसिक स्थिति पे इनका इमीडिएट इम्पैक्ट, हमने एक्चुअली बुलिंग पे इम्पैक्ट देखा स्कूल के अंदर, जिन बच्चों के दांत गिर जाते हैं कीड़ा लगने या फिर चोट लगने की वजह से।
अंकुर जी, जानना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन जो है किस तरह के कदम उठा सकता है कि डेंटल हेल्थ के इस क्षेत्र में और जागरूकता दिखाई पड़े।
डेफिनेटली कई गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्कूल्स पार्टिसिपेट करके वो डेफिनेटली जो है अपने ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को एक तो जो रिसोर्सेज चाहिए उनके ओरल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, ये कीड़ा ना लगे उसके लिए, और दूसरा है कि कई स्कूल्स में एक्चुअली में डेंटल प्रोग्राम्स ट्रीट भी करते हैं, तो वो भी है कि वो मोबाइल डेंटल वैन्स ले जाके उन बच्चों को वहाँ ट्रीट करते हैं. तो ये स्कूल्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. तीसरी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्टडी का जो नॉवल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि अगर अगर उनकी बुलिंग अगेंस्ट बुलिंग स्ट्रैटेजीज है तो वो उन क्या कहते हैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स में ओरल हेल्थ का मेंशन करें, उनकी ट्रेनिंग में इंक्लूड करें कि कैसे बच्चे अगर उनके दांतों की वजह से उनको उनको ये सहना पड़ रहा है तो कैसे उनके उनको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, या बच्चों को सिखाएं कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे या दांतों के अपीयरेंस के बेसिस पे बुली करना नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन.
अंकुर जी, इस रिसर्च में निम्न आय वर्ग यानी जो लो इनकम ग्रुप्स से बच्चे आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए दांतों की देखभाल यानी डेंटल केयर को लेकर आज की तारीख में हमें क्या मुख्य चुनौतियां देखने को मिल रही हैं?
वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि खासकर के डेंटल, चाहे हम दांत में कीड़े लगने की बात करें या आप कोई भी डेंटल इशू को लें, तो वो जिन ज्यादातर ये पाया गया है कि जो लोग सोशल डिसएडवांटेज या आपने जैसे कहा निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनका वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू यू नो पीपल हु आर एडवांटेज. तो जो मेन इसमें रीजन है, देखिए जो कीड़ा लगने का मेन कारण है हाई शुगर कंजम्पशन, जो कि हुआ चीनी ज्यादा मात्रा में खाना. अब खास करके हमारे देसी फैमिलीज में ये बहुत कॉमन होता है कि मिठाइयाँ दी हमने बच्चों को या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं. सिंपल सा लॉजिक है, अगर चीनी नहीं होगा तो दांत में कीड़े नहीं लगेंगे. तो आपको जितना कम से कम रिस्ट्रिक्ट कर सके बच्चों को शुगर कंजम्पशन, वो इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज है फ्लोरिडेटेड फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करवाना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है. टैप वाटर भी ना, उसमें फ्लोराइड होता है बहुत जगह ऑस्ट्रेलिया में, उससे प्रोटेक्शन मिलती है. तो एक तो ये जो है आपका पहला ही स्टॉप करना उनको बीमारी होने से पहले, और दूसरा जो है वो है कि डेंटल केयर को डिले नहीं करना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि प्राइवेट डेंटिस्ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर कई हमारे साउथ एशियन फैमिली जो होती हैं वो चाइल्ड डेंटल बेनिफिट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होती है या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं होती है, तो ये इंश्योर करना कि उनकी इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है प्राइवेट डेंटिस्ट्री को और वो टाइमली जाके अपने बच्चों का इलाज करा सके, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये कुछ क्लियर चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली फॉर पीपल एक्सपीरियंसिंग सोशल डिसएडवांटेज.
आप इस क्षेत्र में कई सालों से हैं और आपके जैसे और भी रिसर्चर्स होंगे, एनालिस्ट्स होंगे, तो वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो सरकार को किन नीतियों या योजनाओं पर ध्यान देने के लिए, मतलब उनको क्या लगता है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर डेंटल केयर मिल सके?
जी बिल्कुल, तो हम सब ये कोशिश करते हैं कि एक तो डेंटल या ओरल हेल्थ को बाकी के जनरल हेल्थ से अलग नहीं देखा जाए. जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है कि आपको अगर आप हॉस्पिटल में जाके कोई इलाज कराते हैं तो उसके लिए आपको आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट नहीं करना पड़ता है या जीपी के पास नहीं करना पड़ता है कई बार बल्क बिलिंग, लेकिन डेंटिस्ट्री में ज्यादातर लोग कवर्ड नहीं है डेंटल केयर से किसी भी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम से. तो हम सब अपना डाटा, अपने ये सारा रिसर्च यूज करते हैं टू एडवोकेट फॉर मोर एंड मोर कवरेज, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डेंटल कवरेज के अंदर आए. दूसरी चीज है हम साथ में लॉबी भी करते हैं कि ये जितनी हाई शुगर प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स लगे ताकि वो उनकी सप्लाई कम हो, और सिमिलरली जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वहां पे शुगर कम से कम हो, या कैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़े इस बारे में कि शुगर कम से कम खाएं. सो गवर्नमेंट कई तरह से जो है अगर चाहे तो ओरल हेल्थ के लेवल्स बेहतर कर सकती है. एक तीसरी चीज जो हमने देखी है कि डिस्पाइट ये चाइल्ड डेंटल बेनिफिट स्कीम है जिसमें कई लोग कवर्ड हैं, फिर भी उसका अपटेक बहुत कम है. तो बच्चे जो एलिजिबल है पब्लिक डेंटल केयर के लिए मेरे ख्याल से उनको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए.
बिल्कुल अंकुर जी, आपका आज SBS हिंदी से जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
धन्यवाद.
और
और इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद फिर प्रस्तुत होती हूँ भारत की एक कहानी लेकर के। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
ब्रेक के बाद आप SBS हिंदी पर फिर से हैं वृशाली के साथ, और अब आइए चर्चा करते हैं कि बनारस के घाट पर लोग गंगा स्नान करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ एक गलती कर देते हैं, अपने पुराने कपड़े अक्सर वहीं छोड़ करके चले आते हैं जो बाद में प्रदूषण का कारण करते हैं। लोग इन्हें अलग अलग डंपिंग साइट पर ले जाते हैं, लेकिन घाटों पर लोगों द्वारा छोड़े गए कपड़ों की अब रिसाइकलिंग होनी शुरू हो गई है और इससे बनाए जा रहे हैं झोले। तो कैसे इन झोलों को बाजार में लाया जा रहा है, कैसे इनका प्रयोग हो रहा है, कैसे ये बन रहे हैं, इस सब पर आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट।
बनारस, इस शहर का नाम सुनते ही एक अनोखी अनुभूति होने लगती है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत अद्वितीय है। बनारस के घाट इस शहर की पहचान है। दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद घाट यहाँ के प्रमुख घाट हैं। गंगा आरती के दौरान इन घाटों पर भव्य दृश्य देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा संकटमोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर और तुलसी मानस मंदिर भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बनारस के घाट पर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक जाने अनजाने में गलती भी कर देते हैं। पुराने कपड़े अक्सर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पुराने कपड़े वहीं पर पड़े पड़े प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। इनको उठाकर अलग डंपिंग साइट पर डाला जाता है। इन पुराने कपड़ों का पहले कोई उपयोग नहीं होता था, लेकिन अब बनारस में ही इन कपड़ों का उपयोग होना शुरू हो गया है। बाकायदा घाटों पर लोगों द्वारा छोड़े गए कपड़ों की रिसाइकलिंग शुरू कर दी गई है। इन कपड़ों को साफ करके झोले बनाए जाते हैं, जो लोगों को मार्केट में ठेले वाले को, दुकानदारों को वितरित कर दिए जाते हैं। इसके बदले उन्हें प्लास्टिक के बैग्स को प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब तक 1,00,000 के करीब झोले वितरित किए जा चुके हैं। कैसे शुरू हुआ ये अनोखा काम? बनारस के घाटों से पुराने कपड़ों को बीनकर नगर निगम के कर्मचारी ले जाते थे। इस कार्य में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा का सराहनीय योगदान रहा, क्योंकि ये आइडिया नगर आयुक्त का ही था कि कैसे इन कपड़ों को सदुपयोग किया जाए। पहले ये कपड़े डंपिंग ग्राउंड पर जाते थे, अब इनको रिसाइकिल करने के लिए ठीक से धोकर फिर सुखाकर झोला बनाने के लिए सेंटर भेज दिया जाता है, जहां पर महिलाएं इन झोलों को सिलती हैं। इस सब काम को कौन करता है? ये है बनारस के रहने वाले दिव्यांशु उपाध्याय। इनकी एनजीओ होप वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है और वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो ही इन कपड़ों को रिसाइकिल करके झोला बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में दिव्यांशु बताते हैं।
पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा होप वेलफेयर ट्रस्ट क्या है, हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली गाँव के विकास के लिए काम करता है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है। तो महिलाओं के लिए छोटे छोटे लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास, तो हम लोग लास्ट 10 ईयर से मतलब इसी दिशा में काम करते आ रहे हैं। तो ये जो आपने अभी सवाल पूछा कि मतलब कैसे ये विचार आया, था ये कि हम लोग नगर आयुक्त सर से मीटिंग करने गए थे और सर ने डिस्कस किया कि दिव्यांशु जी, घाट पे बहुत ढेर सारा मात्रा में कपड़े लोग छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो गंगा स्नान करने आए हों या किसी कारणवश लोग पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, तो वो उसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कपड़े फिर डंप में जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था ये, तो कि कैसे टैकल किया जाए पुराने कपड़ों को। तो उन्होंने हम लोग से आइडिया डिस्कस किया कि आपका बहुत बड़ा स्टिचिंग सेंटर है, हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि हम आपको पूरा ये कपड़े आपको हैंड ओवर करेंगे और फिर हम लोग उसको मतलब कैसे रिसाइकिल करके उसको झोले के उस पर वितरण किया जाए। दिमाग में पहले से ये चीज था, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री सर का था कि काशी को प्लास्टिक फ्री किया जाए किसी भी तरीके से, और मतलब लोग प्लास्टिक मतलब इको फ्रेंडली काशी बने जल्द से जल्द। जिसमें प्लास्टिक को लोग प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कर सके। तो फिर उसी दौरान जब नगर निगम नगर आयुक्त से मुलाकात हुआ, सर ने ऐसा बोला बस हम लोग तुरंत लग गए। सर के माध्यम से जो भी पुराने कपड़े और बाकी जो भी लोग जो पुराने कपड़े हम लोग को डोनेट करते हैं वो कपड़े हमारे सेंटर पे आता है, महिलाएं रिसाइकिल करती हैं और वापस वो हम लोग झोला बना के उनको हैंड ओवर कर देते हैं।
अच्छा नहीं लगता था, गंगा जी के घाट पर जगह जगह पुराने कपड़े फैले रहते थे, उनको बीन कर नगर निगम के सफाई मित्र एक ट्रॉली में भर करके दूर ले जाते थे जहां पर वो डंप कर दिए जाते थे, उनका कोई उपयोग नहीं था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इनको उपयोग करने के लिए ही ये आइडिया निकाला कि इन पुराने कपड़ों को किसी तरह से प्रयोग में लाया जाए और उनसे झोले बनाए जाएं जो लोगों के काम की भी चीज है और वो इसका प्रयोग भी करेंगे।
नगर निगम के सफाई मित्र होते हैं उनके पास जो सफाई करते हैं कपड़े वो अलग कर देते हैं, या हमारे टीम के वॉलंटियर्स महिलाएं नियमित रूप से जब वो कपड़े मतलब सफाई अभियान चलाती हैं घाटों पे तो कपड़े कलेक्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ कपड़े कलेक्ट करके वो वहीं से कपड़ा हम लोग को मिल जाता है और फिर गांव की महिलाएं हैं पूरा रिसाइकिल होता है, मतलब वॉशिंग मशीन में धुला जाता है, सुखाया जाता है, तब जाके सेंटर पे जाता है झोला बनने के लिए। सबसे जो हम लोग क्या करते हैं ना कि झोला जो बनता है हम लोग सारा झोला अभी तो नगर निगम खुद ले लेता है क्योंकि उनका प्लास्टिक विकासिक लेकर पूरा रोल है, तो हम लोग उनको भी हैंड ओवर करते हैं। फिर साथ में घाटों पे अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको झोले देते हैं कपड़े का झोला देते हैं और फिर उनसे अपील करते हैं कि आप मतलब कपड़े का झोला इस्तेमाल करें। क्योंकि पहले क्या था ना पुराने समय में लोग कपड़े का झोला घर से लेके जाते थे चाहे सब्जी लेने के लिए छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए, आज के समय में क्या हर लोग जाते हैं मार्केट वहां से प्लास्टिक लेके चले जाते हैं, घरों तक प्लास्टिक आता है तो इससे पूरा एक वातावरण खराब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं और जिसको खरीदना होता है हम लोग एक महिलाओं का एक फिक्स किया हुआ कॉस्ट है वो कॉस्ट बेयर करते हैं, लोग झोला खरीद लेते हैं, अब बहुत मजबूत झोला बनता है सर।
देखते देखते अब तक 1,00,000 से अधिक झोले बनाए और वितरित किए जा चुके हैं, ये बाजार में लोगों को दिए गए हैं, लोग और दुकानदार सभी लोग इससे खुश हैं, इससे कई फायदे हुए हैं। पहले गंगा का घाट साफ रहता है, प्रदूषण नहीं होता, इसके अलावा बाजार में प्लास्टिक का उपयोग कम हो गया है, इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है, इसके अलावा महिलाएं जो इन झोलों को बनाती हैं उनको रोजगार मिल गया है।
टेस्टिंग के लिए कि हम लोग अप्रोक्स अभी 1,00,000 से अधिक झोला बांट चुके हैं नगर निगम साथ मिलकर और काफी लोग अप्रिसिएशन किए हैं क्योंकि एक तो पुराने कपड़ों से झोला बनता है तो जो पुराना कपड़ा डंप में जाता था उससे वो जाना कम हुआ और हम लोग अपील करते हैं तो कपड़े का झोला क्या प्लास्टिक में फट जाएगा लेकिन कपड़े का झोला जिसको मिल जाता है वो यूज कर लेता है आसानी से। तो सबसे ज्यादा खुशी तो महिलाएं हैं गांव की जिनको ये रोजगार मिला हुआ है। घाटों पे जो फूल माला लोग प्लास्टिक में दे देते थे उनको उनके लिए छोटा झोला बनता है वो छोटे झोले में देते हैं तो सर ओवरऑल मतलब जहां तक पहुंच पाता है लोग खुश रहते हैं और उनका सीधा सा है कि देखिए एक सर एक तीर से तीन निशाने लग रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ लोकल महिलाओं को लाइवलीहुड मिल रहा है और न सिर्फ लोकल महिलाओं को लाइवलीहुड मिल रहा है सर हम लोग एक बहुत बड़े क्वांटिटी में जो कपड़े जाते थे डंप में वो उन कपड़ों को हम लोग रोक पा रहे हैं और उस कपड़े को वापस झोला बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
एक सकारात्मक पहल जीवन में बदलाव जरूर लाती है और ये दिखता भी है। लखनऊ से फैसल फरी।
और इसी के साथ आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपको अपना बेहद ध्यान रखना है, उसमें कोई कोताही नहीं, ठीक है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।